Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Gambhiranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
अच्छा ठीक है, आप यदि बुद्धि के यदि स्नान यदि उचित मान रही है तो फिर आप करवाइएगा। अब तो कहा कि यदि कर्म को यदि आप साध्य मानोगे या कर्म को मोक्ष प्राप्ति या अमृतत्व प्राप्त में आप कर्म को साधन मानोगे तो क्या होगा। कर्म साधनत्व ठीक है, तो क्या होगा। कहा कि मोक्षस्य चतुर्विध क्रियांतर भावाद अनित्यत्वं स्यात्। ठीक है, ये मोक्षस्य अनित्यत्व, मोक्ष जो अनित्य हो जाएगा ऐसा अन्वय करना है। मोक्षस्य अनित्यत्वं स्यात्, मोक्ष जो है अनित्य हो जाएगा। हाँ, क्यों हो जाएगा। कहा कि ये जो कर्म को साधन मानने पर अब कर्म के जो चतुर्विध जो क्रिया का फल है उसके साथ अंतर्भावाद यानी अंतर्भूत होने से, हाँ, कर्म के जो कर्म करते हैं ना उसका कर्म का फल चार प्रकार का बताते हैं। हाँ, अब वो चार प्रकार क्या है। कहा कि उत्पाद्य है, विकार्य है, संस्कार्य है, प्राप्य है, ये चार प्रकार क्रिया का फल है। हाँ, ठीक है। अब उत्पाद्य क्या है। हाँ, कोई चीज को हम कर्म करके ही तो उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। घटपटादि जो भी होगा, गणपति मूर्ति है जो भी है, हाँ, मिट्टी लाते हैं, ये लाते हैं और उसको कर्म करते हैं। कर्म करते हैं उसे जोड़ना मिलाना सब करते हैं, करके एक उत्पन्न करते हैं। तो भी कर्म से उत्पन्न हुआ, ये उत्पाद्य है, कर्म का परिणाम है, कर्म का फल है, उत्पाद्य है। ठीक है, और विकार्य है, और विकार यानी कोई ना कोई विकार को प्राप्त करेगा वो। हाँ, और वो विकार को प्राप्त करने कर्म प्राप्त करने के लिए कर्म ही कारण है, कोई ना कोई विकार को प्राप्त करता है। हाँ, आप घास खिलाओ गोबर के रूप में उत्पन्न होता है, लकड़ी लाओ काट कूट करके उसे कुर्सी बनाओ तो लकड़ी का ही वो विकार है। हाँ, जो भी है अब कर्म के द्वारा ही फिर जो है वो विकारी होता है, संस्कारी होता है। उसमें जो भी कुछ दोष फूस कुछ आ जाता है, जैसे कपड़ा है, हाँ, कपड़ा में मैल लग गया, अब साबुन ला कर उसको घिसो और मैल को साफ कर फिर संस्कार कर दो, संस्कारी है। अब मन में बहुत सारे कुछ पड़ा है, भगवान का नाम लेते लेते संस्कार करो, और 16 संस्कार भी है। हाँ, 16 संस्कार है, गर्भ से लेकर के मृत्यु तक संस्कार ही संस्कार है। अब हम वो संस्कार से संस्कारित नहीं हुए हैं, इसीलिए हमको ये ज्ञान पचता नहीं है। माँ के गर्भ में जो संस्कार होना चाहिए, 6 महीने में जो संस्कार होना चाहिए, 8 महीने में संस्कार होना चाहिए, बच्चा पैदा होने के बाद जो संस्कार होना चाहिए, 11 दिन में जो संस्कार होना चाहिए, 1 साल होने के बाद जो संस्कार होना चाहिए, हाँ, विद्या का संस्कार जैसा होना चाहिए, स्कूल को जाने से पहले जो संस्कार होना चाहिए, उससे पहले जो जनेऊ संस्कार होना चाहिए, यज्ञोपवीत का संस्कार होना चाहिए, ये सारे हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कार ही संस्कार है, संस्कार ही संस्कार है। अब ये सुनकर के आदमी बस थक जाता है, क्या नाटकबाजी करते हैं इसे पता नहीं। हाँ, क्या करना है, अभी गर्भ हो गया, गर्भ हो गया, अब उसमें क्या संस्कार करना है फिर। कितने बढ़िया आविष्कार है। हाँ, गर्भों में भी संस्कार करोगे, वो संस्कार बच्चे के अंदर पड़ता है और पैदा होने के बाद पिता माता जी संभालता है, अच्छा काम करता है, देश के लिए कुछ लड़ता है, कुछ करता, समाज के लिए करता है। अब वो सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अब वो चीज दूसरे में अप्लाई करते हैं, मजा मलिश करो, अब प्रेग्नेंट केस में फिर जाकर के नेक्ड पिक्चर देखना, ये देखना, वो देखना, क्या क्या दुनिया। मैं देखा हूं एक स्टूडेंट लाइफ में, कोई किसी शादी हुई कोई फ्रेंड का, उसके घर में घूमते घूमते के लिए जाते थे हम लोग मिलकर, फिर पार्क में चले जाते थे। अब उसके बेड में एक इतना बड़ा एक कैटलॉग पड़ा है, उसमें इतना नेक पिक्चर है उसमें, अब उसको देखते रहना क्या नाटक है। और जबकि यहां कहा जाता है गर्भवती अवस्था में भागवत सुनो, अच्छा अच्छा जो भगवती देवी का और जो समाज के लिए जो शरीर त्याग कर दिया है उनकी कहानी सुनो, जब ये कहा जाता है। अब उसके स्थान पे ये देखना है, ये सुनना है। अब बच्चा जब पैदा होगा वो भोगी नहीं होगा, कामी नहीं होगा, तो होगा क्या है। क्या होगा? जब यही सोचते सोचते वो 10 महीना निकाला बताइए, ये सब जो है बहुत सारे इसमें संस्कार की बातें हैं। अच्छा हाँ, तद अनित्यम क्रिया अंदर भावाद अनित्यम स्यात्। मोक्ष से जो है अब ये जो 4 प्रकार क्रिया का फल है उससे अंतर्भूत हो जाने से ये मोक्ष जो है अनित्य हो जाता है। अब लिख रहे हैं अनित्य किसको कहते हैं, अनित्य किसको कहते हैं? कहते हैं कि यत कृतकम तद अनित्यम इति। हाँ, जो किया हुआ बाला होता है वह अनित्य होता है, ये शाब्दिक अर्थ है। अर्थात जो उत्पाद्य होगा वह अनित्य होगा। हाँ, जो क्रिया साध्य होगा वह अनित्य होगा। हाँ, नहीं समझे? जिसके लिए कर्म साधन बन जाएगा वह अनित्य होगा। कैसे भी शब्दों से बोलिएगा, यत कृतकम तद अनित्यम, ठीक है? क्रिया से जो उत्पन्न होता है, क्रिया के द्वारा जो साधा जाता है वह उत्पन्न होने के बाद वो अनित्य हो जाता है, यानी वो नाश होगा और परिवर्तनशील होगा, ये पक्का है, वो अनित्य है, ठीक है? कर्म साध्य साध्यस्य नित्यत्वाद नित्यत्व अदर्शनात्। कर्म साध्यस्य नित्यत्व अदर्शनात्। अब कर्म साध्य जो है नित्य है क्या? ये तो कोई देखा ही नहीं है, ऐसे तो कभी देखी नहीं जाती है। कर्म साध्य में नित्यता ऐसा कभी देखी नहीं जाती है, ठीक है? यानी कर्म से कोई साधा गया और वो नित्य हो गया, कभी वो नाश नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है, ना? होगा ही नहीं। नित्यस्य मोक्षः सर्ववादी भी अभ्युपगम्यते। और जो सर्ववादी हैं, जो भी हमारे जो वेदांत में सब जो आते हैं, वादी वाले आते हैं, सब बताते हैं, उन लोगों से नित्य मोक्ष नित्य अभ्युपगम्यते, यानी मोक्ष जो है नित्य है, इसी प्रकार जाना जाता है उन लोगों से, महात्माओं से जो वेदांत को बताते हैं, जो सिद्धांती है, उनके द्वारा मोक्ष ही नित्य है ये बताया जाता है, कर्म नित्य नहीं है, ऐसा कभी देखा नहीं गया है, ठीक? तथा करके बता रहे हैं श्रुति चातुर्मास्य प्रकरणे। एक श्रुति में, एक चातुर्मास्य के प्रकरण में श्रुति बताती है, क्या बताती है? प्रजा मनु प्रजायसे तदुते मर्त्या मर्त्य अमृतम इति। कहा कि है मर्त्य, क्योंकि मरणशील है, उसका संबोधन कर रहा है, कहा कि है मर्त्य कि प्रजाम अनु प्रजायते तद, ऊ तद से अब ऊ निकाल दो, फिर तद ऊ हो जाएगा, और ते अमृतम इति कि कहा कि चातुर्मास्य प्रकरण में कि तुम जो है जो पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, मतलब जो है कि ये थोड़ी सी प्रसंग थोड़ा सा देख लीजिए, प्रसंग कैसा है, बहुत बढ़िया प्रसंग है ये, जो कि आदमी जब विवाह करता है, विवाह करने के बाद फिर संतान उत्पत्ति में फिर वो प्रवृत्ति होता है, उस समय में वो चाहता क्या है, वो पत्नी क्या चाहती है और पति भी क्या चाहता है। तो पुरुष ये चाहता है कि मैं जैसा हूं ऐसा ही एक मेरा जो पैदा होगा, जो मेरा पुत्र पैदा होगा, कि मैं जैसा हूं ऐसा ही हो, यानी मेरा नाक जैसा वह नाक ऐसी हो, मेरा रूप जैसे वो रूप हो, और मैं जो चाहता हूं, जो करना चाहता हूं, जो मेरी इच्छा है वो इच्छा उसकी भी हो, पूरे रूप से टोटली वो ऐसी एक पैदा हो, ये जो पुरुष जो अंदर से खूब चाहता है। इसी प्रकार पत्नी भी चाहती है, ता ना ऐसी एक संतान पैदा होती है। अब देखो यदि पुत्र यदि पैदा हो गया, ठीक 18-20 साल में बिल्कुल पिता के जैसे दिखाई देने लगता है, उसकी जैसे में बहुत ऐसे बच्चे हो ऐसे होते हैं, पिता जैसे चलता है वो ऐसे चलता है, हाथ का उसका हिलाना डोलाना ऐसा हाथ हिलाना डोलाना, नाक ऐसी नाक, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी हो जाता है, बताइए सुनने। उसका यदि 30 साल में यदि उसका यदि बाल यदि निकलना लगता है, टकलू होना लगता है, वो पुत्र का भी 30 साल से उसका भी टकलू होना शुरू हो जाता है। अब बताओ, और जबकि उसके फ्रेंड सर्कल में सभी का बाल जो बहुत बढ़िया मजा बाल है, और लेकिन 30 साल के अंदर में इतना तो टकला हो जाता है, और उसको पूछा जा रहा है तेरा कैसे टकला हो रहा है, अरे मेरा पापा का भी इसी है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पुरुष जो है पूरा एग्जिट ऐसी एक उत्पन्न हो, बिल्कुल मेरे जैसे एक उत्पन्न हो। इस प्रकार कहा करके क्या करना चाहता है, ये चाहता है, वो जानता है कि मैं तो मरने वाला हूं और मेरे जैसे और एक पैदा हो जाए, एग्जैक्ट ऐसी पैदा हो जाए। इसी प्रकार जो है पुत्र उसे वो स्वयं ही पैदा होता है, पुत्र ही पिता ही पुत्र उसे पैदा होता है, और कोई नहीं पैदा होता है। इसी प्रकार जीव के अंदर में इच्छा होने के कारण शास्त्र कहा कि उसमें भी अमरत्व तो है, क्योंकि कभी नहीं चाहता है कि कोई किसी रूप में खाली हो जाए, मेरी सत्ता नाश हो जाए, ये चाहता नहीं है। पुत्र उसे फिर पैदा हो जाता है, फिर पुत्र जो अपना झंडा उड़ाता है, फिर पिता के झंडा, क्योंकि वो पिता ही पुत्र है। हाँ, समझाई बात, उस चीज को यहाँ ये प्रसंग है। ये नहीं नहीं नहीं, प्रतिबिंब की बात नहीं है, प्रतिबिंब ठीक है, वो अपने जगह वो शब्द हम यहाँ यूज नहीं करना है। वो पूरा पूर्ण इच्छा से वो मैं जो मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो गुण है, मेरा जो धर्म है और मेरा शरीर का भी जो आकार है, ऐसे ही एक पैदा हो जाए, मैं ही एक पैदा हो जाऊं, लेकिन पुत्र उसे पैदा हो जाऊं, ऐसा होकर पैदा होता है। परंपरा, आप परंपरा ठीक है, आप परंपरा हाँ, ये जो है ये चीज आप समझोगे तो फिर अमृत चीज को आप समझोगे। मैं जो बता रहा हूं, फिर बहुत क्या हुआ कि है तो इसका शरीर कुछ साल के बाद इसका शरीर नाश हो जाएगा, लेकिन फिर वही जो पुत्र भी पैदा हो गया, अब वो तो पैदा हो गया, ये नाश हो जाने दो ना, फिर वो फिर पिता बनेगा और फिर ऐसी फिर एक पुत्र की कामना करेगा। इसी प्रकार से जो है अमृत जो है सिद्ध हो जाता है। वो दूसरी योनि में जब जाएगी, अब आप फिर प्रश्न को फिर जटिल कर देगी तो फिर उत्तर भी जटिल होगा। अब वो जो दूसरी योनि में जाएगी, फिर किसी न किसी पुत्र में पुत्र रूप में ही जाएगा। अब उसका जो पिता होगा, फिर वो पिता जैसे जैसे कामना करेगा, वो पुत्र जो उसी प्रकार आकर के यानी उस रूप में ऐसे गुण धर्म को लेकर ही पैदा होगा, फिर उधर सिद्ध करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइफ में। हाँ, वो क्रिटिकल हो जाएगा, उसको सिद्ध करके, हाँ तो दूसरे जन्म की बात है, फिर उसको सिद्ध करके तो फिर और जटिल हो जाएगा, उसको सिद्ध नहीं करना है। आप अमृत को आप ये चीज समझिएगा, चलिए आगे निकलिएगा। कि अब हाँ, किंच सुकृतम इति सुकृतस्य अक्षयत्वम उच्यते। अब एक सुकृत श्रुति है, जिस श्रुति में सुकृत शब्द आया है, अक्षयम ह वै चातुर्मास्य याजिन सुकृतम भवती, ये एक सुकृत श्रुति है। इस श्रुति में जो सुकृत शब्द पड़ा है, उस सुकृत शब्द से ये अर्थ कर रहे हैं कि अक्षयत्वम उच्यते, सुकृत को अक्षय कहा, सुकृत को अक्षय कहा। अब सुकृत का अर्थ कहा, सुकृत का क्या अर्थ है आगे लिख रहे हैं, सुकृत शब्दस्य कर्मणि, कर्म अर्थ में सुकृत शब्द का यहाँ प्रयोग है। जब कर्म अर्थ में सुकृत शब्द प्रयोग, सुकृत जानते हैं, सुकृत यानी पुण्य कर्म आदि तो सुकृत कहते हैं, कुकृत और सुकृत। अब कर्म अर्थ में जब सुकृत शब्द है, अब सुकृत शब्द का अर्थ किया कि अक्षयत्वम उच्यते, अक्षयत्व अर्थ किया, अब कर्म का अर्थ अक्षयत्व हो गया। अब बताओ ठीक, इसलिए जो है आगे थोड़ा छोटा सा प्रश्न सिद्धांत पक्ष में ही प्रश्न उठा रहे ननु करके, ननु एवं तरी तब इसी प्रकार हो जाने से कर्मणाम देवादि प्राप्ति हेतुत्वेन बंध हेतुत्वम एव। अब और भी तो है, हाँ, कर्म का देवादि प्राप्ति के हेतु होने से बंध का भी हेतु होता है, बंधन का भी हेतु कारण बन जाता है, हाँ ये भी तो है। हाँ, देवादि के प्राप्ति के कारण होने से बंधन का भी कारण हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सभी विचार होकर के कहा कि सत्यम, ठीक ये सब ठीक है, लेकिन आखिर में आपको ये मानना पड़ेगा कर्म जो है स्वयं जो है बंधन का कारण बनता है। स्वतः बंध हेतुत्वम एव, इसके लिए श्रुति तथा च श्रुति, क्या श्रुति है, कर्मणा पितृलोक, सारे श्रुति श्रुति है, बृहदारण्यक के उपनिषद में आया, सर्व एते पुण्य लोका भवन्ति, एक सर्व पुण्य लोका भवन्ति, हाँ ठीक है, पुण्य लोगों के ये जो है सब जो है क्या हो जाते हैं, भागी हो जाते हैं ये सारे कर्म। इष्टपूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम न अन्यत श्रेयः वेदयन्ते प्रमूढाः, जो इष्टपूर्त कर्म है या? उसको इष्ट और अपूर्त, ये जो बावड़ी फोड़ी से करते हैं ना, मंदिर मंदिर बनवाते हैं, बावड़ी बनाते हैं, ये सब कर्म है बहुत, हाँ तो ये जो है सब, आपके तो लोग जो भी बहुत सारे इसे बॉम्बे में तो इस बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं, हर जगह में, कोई बॉम्बे में जैसे हॉस्पिटल बनाने में, विद्यालय बनाने में उनका अच्छा लगता है, तालाब बनाने में अच्छा लगता है, लेकिन कोई इसे भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए कोई उनको बिल्कुल जमेगा ही नहीं, एक भी एक रुपये भी डोनेशन नहीं देंगे। यदि कोई एजुकेशनल कोई शैक्षणिक कोई संस्था यदि बनाओगे, पढ़ाने का कुछ कर्म ऐसा कुछ होता होगा तो तुरंत पैसा दे देंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो उसको ही ज्यादा प्रधानता देते हैं, ठीक है। अब ऐसे हाँ वो दिखाई देता है वो, हाँ हाँ यश भी है, सब कुछ है, आई किसी में यश नहीं है, सब में यश है, लेकिन एक मान्यता है वो, तो उसको जो है वरिष्ठम यानी सबसे अच्छा मानने वाले, वरिष्ठम मन्य माना यानी उसको सबसे अच्छा मानने वाले, प्रमूढ़ हा, अरे बाबा कितने अच्छा अच्छा, अब कोई तालाब खुदवाया अब कितने लोगों का उपकार होगा, अब वे लोग जो है कुछ उसके अंदर में, उनके अंदर में कुछ ऐसा कुछ बुद्धि होती है जो उनको मूड कहेंगे, यानी जकड़ कर पकड़ लेते हैं कि यही सबसे अच्छा है और कुछ दुनिया में नहीं, ऐसा कुछ जब मान लेते हैं तो मूड होते हैं, नहीं तो कर्म तो अच्छा ही होता है, ठीक है। तो जो मूड होते हैं प्रमूढ़ जो मूड है, न अन्यत श्रेयः वेदयन्ते, बोध है दूसरा कोई कल्याणकारक है वो ऐसा मानते नहीं है, इसलिए जो मूड है, यदि उस कर्म के साथ साथ और बाकी चीजों को भी यदि अच्छा मान लेते तो फिर मूड नहीं होते, एक कोई पकड़ कर बैठ गए इसीलिए वो मूड है। न अन्यत श्रेयः वेदयन्ते, दूसरे कोई कर्म को फिर जो है वो अच्छा नहीं मानते हैं, इसी प्रकार जानते हैं मेरे कल्याणकारक उससे कोई नहीं है, नाकस्य पृष्ठेते सुकृते अनुभूत्वा इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति, नाकस्य नाक का है क्या, क्यों स्वर्ग है, स्वर्ग क्यों है, क्या अतुल भाई अच्छा जहां कोई कमीपन ना हो और जहां कोई दुख ना हो, न कम अकम दुखम इति यत्र, तो स्वर्गम यानी जहां कोई कमीपन ना हो, कम न कम और अकम यानी दुखम, जहां कोई दुख भी ना हो उसको हम स्वर्ग कहते हैं, ठीक है। यानी स्वर्ग को जो प्राप्त जो कर लेता है उसकी कोई कमीपन नहीं होता, यूं इच्छा करेगा संकल्प करेगा तुरंत कन्या आ जाए, यूं इच्छा करेगा तुरंत भोग्य पदार्थ खाने के लिए आ जाएगा, बस वहां तो बस संकल्प ही है, ठीक है। तो फिर ऐसा पृष्ठे यानी बढ़िया स्थान में रह करके, स्वर्ग में बढ़िया स्थान में रह करके, ठीक है, अनुभूत्वा सुकृति अनुभूत्वा यानी सुकृति को अनुभव करके, ठीक इमं लोकम ते इमं लोकम हीनतरम वा विशंति, फिर इस लोक को और उससे भी और उस निकृष्ट से निकृष्ट लोक, जैसे नरक आदि लोक या योनि लो चंडला आदि योनि लो, उस योनि में आकर प्रवेश कर ले, ठीक है। इसी प्रकार कहा, आगे उसका आगे विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।